कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बहुत सुंदर गीत सुना हम सभी ने कर्मों के ऊपर। तो इन्हीं कर्मों के विषय पर समझाने के लिए साथ साथ टाइम साइकिल, समय का चक्र, इस विषय पर समझाने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। हम एक हाथ ऊंचा करके आपका अभिवादन करते हैं, सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। आप तो हमें बहुत अच्छी गहन जानकारी देंगे कर्मों की, गुह्य गति की, समय के चक्र की। लेकिन उससे पहले मैं आपका परिचय इन सब भाई बहनों को दे दूं। आपने आज से करीब 50 वर्ष पूर्व 1964 में एक ज्ञान लिया मुजफ्फरनगर से। आप मुजफ्फरनगर से निकले ईश्वर के स्पार्कलिंग, क्या कहेंगे, मास्टर सूर्य है। जैसे सूर्य आसमान में चमकता है, ऐसे ही अध्यात्म के गगन में भी आप सूर्य बनकर चमक रहे हैं। और 4 साल बाद ही, ज्ञान लेने के 4 साल बाद ही, या यूं कहें 1969 में पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने अपना भौतिक देह त्याग कर अव्यक्त हो गए। उससे एक साल पहले 68 में आप हेडक्वार्टर में आए और तब से ही अपना जीवन समर्पित किया। तो आपका बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि एक साल तक आपने ब्रह्मा बाबा का भी सानिध्य प्राप्त किया। और उस सानिध्य का ये रिजल्ट कि बहुत अच्छी ऊंची गहन साधना करने में आप सफल रहे और आज दिन तक वो आपकी साधना का फल अनेकों अनेकों आध्यात्मिक जिज्ञासु लाभ ले रहे हैं। टीवी में आप जानते होंगे, देखते होंगे समाधान प्रोग्राम कितना पॉपुलर है। हाँ, इतना पॉपुलर है कि इनके पास इतने फोन आते हैं कि हम जब इनको फोन करें तो स्विच ऑफ रहता है। हाँ, हमको कभी नहीं मिलते हैं। तो हमको फिर जो इनके साथ इंटरव्यू लेते हैं, कुछ एंकर होते हैं, उनको फोन करके पता करना पड़ता है। क्योंकि सच है ना, इतने फोन आएंगे तो किस किस को आंसर करते रहेंगे। तो बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, संकल्प शक्ति के प्रयोगों के द्वारा लोगों की मानसिक और यहाँ तक कि शारीरिक बीमारियों को भी ठीक करने में आप काफी सफल रहे हैं। यहाँ तक कि जो हमारे प्रभु मिलन के प्रोग्राम होते हैं उससे पूर्व भी उस प्रभु मिलन का पूरा पूरा हम फायदा, लाभ कैसे ले सके उसकी भी तैयारी कराने में आप ही सबको मदद करते हैं। तो अनेक प्रतिभाओं से संपन्न होने के कारण देश विदेश में भ्रमण करते हैं, या भ्रमण कहें या आए दिन इनविटेशन रहते हैं, क्यों लगी रहती है। लेकिन साल में तो 12 ही मास होते हैं, तो पेंडिंग रहते हैं कहीं इनके इनविटेशंस। और सब जगह जाकर भट्टियां कराते हैं। तो बहुत ही अनुभवी हमारे भ्राता जी आप सबके सामने रखेंगे कर्मों की गुह्य गति और समय का चक्र, जिसको पहचान कर हम अपने जीवन को कैसे श्रेष्ठता की ओर लेके जाए, ऐसा सुंदर मार्गदर्शन देंगे आदरणीय भ्राता सूर्य जी।
ओम शांति। कैसा लग रहा है आपको इधर मुंबई की भागदौड़? और यहाँ शांति, चित्त भी शांत हुआ है, हुआ है या हो जाएगा? हुआ है। ये कला सीखनी है, अपने मन को पॉजिटिव कैसे रखें, शांत कैसे करें, क्योंकि आज के युग में सबसे बड़ी दुविधा यही है कि मन बहुत फास्ट दौड़ रहा है, युवकों का तो ज्यादा, सबका ही दौड़ रहा है। तो आज हम बहुत प्रैक्टिकल चर्चा करेंगे, टॉपिक तो ये दोनों ही बहुत बड़े हैं, कई घंटे चर्चा हो सकती है, पर बहुत प्रैक्टिकल, जो रोज के जीवन में आपको काम आए, ठीक है ना। ये स्थान जहां आप आए हैं, पहली बार आए होंगे सभी, कौन कौन पहली बार आए हैं? अच्छा, अभी इस बात पे बहुत अच्छी रिसर्च हुई है, हो रही है, इस स्थान के ऊपर से ही संसार में जो कॉस्मिक रेज फैली हैं वो क्रॉस होती हैं, बहुत सारी, हजारों लाखों, इसलिए इस स्थान के वाइब्रेशंस संसार में सबसे अधिक पावरफुल हैं। जहां हम बैठे हैं, रशिया के वैज्ञानिक बहुत साल पहले यहां आए थे, 35 साल पहले की बात है। ये जो बाबा की झोपड़ी है ना, और उधर शांति स्तंभ, वो एक मीटर लाए थे एनर्जी को रीड करने का। पांडव वन में प्रवेश करते ही उनका कांटा टक्कर लगा के टूट गया था, उनके पास वो पैमाना नहीं था, वो इंस्ट्रूमेंट नहीं था। उन्होंने फिर उन्होंने तैयार किया, उन्होंने बताया यहां से और वहां तक अगर एक रोड बना दी जाए 10-12 फुट की, तो इस पर संसार की सबसे शक्तिशाली एनर्जी बहती रहती है। हम तो उसको जानते थे, क्यों? क्योंकि यहां संसार के सबसे महान तपस्वी यहां से वहीं भ्रमण करते रहे हैं। आप सभी कब से आए हैं यहां? आज 17, तीसरा चौथा दिन, बहुत कुछ सुन लिया होगा। आपके सामने ये एक चित्र है, उधर सीडी जैसा, इसमें कुछ बहुत सुंदर चीजें दर्शाई गई हैं। एक बहुत ही अच्छी चीज, मैं केवल आपको उसको बताऊंगा नहीं, लेकिन मेरा संकल्प है आप सभी उसको रियलाइज करके स्वीकार कर लें। ये परम सत्य है, इसको तर्कों से न जाना जा सकता, न काटा जा सकता। ये सृष्टि का चक्र चार युगों में घूमता है, पता है ना कौन कौन से? सतयुग। सतयुग जब ये संसार था तब हम इस धरा पर आए थे, हम आए थे और नहीं, जानने योग्य बात है। जनसंख्या तेजी से बढ़ती आई है ना, बुजुर्ग लोग बैठे हैं आपसे 60 साल पहले, सारे संसार की आबादी 2 अरब थी, अब 7 अरब पहुंची है 60 साल में, 2 से 7, 3.5 गुना। उसे पहले कितनी कम रही होगी, सतयुग में कितनी कम रही होगी? हम थोड़े, और जब हम इस संसार में उतरे थे, कौन उतरी थी? आत्माएं, शरीर यहां लिए, जैसा शरीर हमें अब है वैसे कितने ही लिए हैं और छोड़े हैं, बदलते आए हैं हम। ये वस्त्र कॉस्ट्यूम है ये हमारी। जब हम उतरे तो हम परफेक्ट थे, संपूर्ण, सभी गुणों से युक्त, जिसको आज मॉरल वैल्यूज लोग कहते हैं, संपूर्ण, चरित्रवान, पवित्र, और हम थे देवी देवता। कौन थे? स्टूडेंट बन गए ना सभी, बुलवाऊ ना आपसे कुछ? छोटे बच्चों से बुलवाते हैं ना, पता क्यों बुलवाते हैं? बोलने से वो उनकी मेमोरी में फीड होने लगता है, यही महत्व है बोलने का। हम सभी देवी देवता थे, देवत्व था हमारे जीवन में, मानताएं थी। चेहरे कैसे होंगे? पाउडर और ये लिपस्टिक क्या क्या है बहनों के पास, वो वहां नहीं होते थे। चेहरे पर इतना तेज जिसकी आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, संपूर्ण पवित्रता, तेजस्वी चेहरे, क्योंकि आत्मा संपूर्ण थी। जन्म लिए, नीचे उतरे, त्रेता में आए, वहां भी देवत्व था। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य मंदिर है कहीं कहीं अभी भी। त्रेता में श्री राम सीता का राज, एक विशेष चीज जो संसार में पढ़ते हैं लोग, हर चीज में गिरावट होती है। हम जब फिजिक्स पढ़ते थे, आप में से कोई बैठे हो फिजिक्स वाले, बताया जाता था एक लोहे का टुकड़ा यदि आप आज रख दो सुरक्षित, तो बहुत सालों में वो समाप्त हो जाएगा, आप ही एनर्जी उससे निकलती जाएगी, कम होता जाएगा उसका सब कुछ, पतन होता है। यही स्थिति मनुष्य आत्मा की भी हुई, प्रकृति की भी हुई, धीरे धीरे नीचे उतरे, लेकिन इतने धीमी गति से उतरे कि पता नहीं चला कि हम उतर रहे हैं। जैसे आजकल के बच्चों को विचार करेंगे आप, 10 साल 12 साल के बच्चों को, हमारी 100 साल पहले की कल्चर का, 50 साल पहले की कल्चर का कुछ पता नहीं। वो तो सोचते हैं कल्चर यही है, एक सुंदर सा बड़ा सा लैपटॉप, वो मोबाइल सबके हाथ में, एक सुंदर सा लैपटॉप हो, बहुत फ्रेंड बने, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ड्रेस ऐसी हो, ये उनको इसी कल्चर का ज्ञान है। उसे नहीं पता हमारा भारत संसार में सबसे महान सभ्य कल्चर, जिसको सभ्यता कहा गया, सभ्यता शब्द सभ्य से निकला, बहुत सभ्य थे देवी देवता हम सभी, अब से पहले भी बहुत सभ्य थे, लेकिन आजकल की जनरेशन इसको ही सभ्यता मान रही जो उनको प्राप्त है, होगा या नहीं? नेचुरल है ना, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। जब से जन्म लिया तो माँ को मोबाइल ही देखा है बड़ा चलाते हुए सदा। एक कहानी आई सच्ची, पति पत्नी दोनों ही मोबाइल के बड़े शौकीन, बच्चा गर्भ में था, माँ मोबाइल पे लगी रहती थी, बच्चे ने एक साल का होते ही मोबाइल छीन लिया और खुद लगने लगा। एक साल, सच्ची घटना है, क्योंकि गर्भ से उसमें वही पड़ गया सब कुछ। तो यही उनकी कल्चर है, हमारी कल्चर देव कल्चर थी, देवत्व था हमारे पास, जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। आप सभी सत्य को स्वीकार करो, हम देवता थे, अपने अंदर झांक कर देखो, देवत्व समाया हुआ है, दबा दिया है हमने, है या नहीं? एक सच्ची कहानी सुना दूं महाराष्ट्र की। एक बहन ने रात को मुझे फोन किया, 10:30 बजे मैं सो गया था, मैं बंद नहीं करता था तब, कहा मुझे नींद नहीं आ रही, विधि बताओ। मैंने कहा अरे मुझे तो आ गई थी पहले, तुमने उसे हंसा, तुमने मुझे भी जगा दिया, बोलो क्या हुआ। मैं सब्जी लेने गई थी, सब्जी वाला महंगी दे रहा था, मैंने सोचा इसे थोड़ा सा आज लेसन सिखा देती हूँ। जैसे उसने पीछे को मुंह किया, मैंने उसके 4 बैंगन उठा के थैली में रख लिए अपनी, बड़ी खुशी खुशी घर लौट आई, यहाँ आज ठीक किया मैंने। सोचा पहले ताजे ताजे नए नए बैंगन है, इनकी सब्जी बनाती हूँ। अब कहानी बदल गई, चाकू उठाया बैंगन काटने के लिए, आंतरिक चेतना धिक्कारने लगी, तुमने ये क्या किया, चोरी के बैंगन बच्चों को खिलाओगी, बच्चे चोर बन जाएंगे। उसने हमारे यहाँ सीखा था, जैसा मन वैसा अन्न, जैसा अन्न वैसा मन। चाकू गिर गया उसके हाथ से, चिंतित हो गई, संभाला अपने को और फिर दूसरी कहा मैंने दूसरी चीज बना दी वो रख दी, अब फिर से सोने आई हूं तो वही याद आ रहा है 5-7 रुपए के बैंगन तुम चोरी कर लाई, पैसे तो हैं। तो मैंने कहा ऐसे करना, सवेरे जल्दी जाना उसको उसके बैंगन वापस कर देना, कुछ भी कहना। सवेरे 6 बजे उसका फोन आया और पता क्या कहा, भाई जी मुझे बहुत शांति मिल रही है। मैंने उसको कहा तुमने 10 रुपए में अपनी शांति बेच दी थी, देखो करोड़ों में नहीं मिलती और तुमने सस्ते में बेच दी, हुआ या नहीं? देवत्व दिखाने लगा। संसार में आज टेंशन का सबसे बड़ा कारण ये है कि मनुष्य अपने देवत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है, और बुद्धिमान मनुष्य को ये पता भी नहीं कि वो कुछ गलत भी कर रहा है, रॉन्ग को राइट मान रहा है। आज का बुद्धिमान मनुष्य पाप को पुण्य समझ रहा है, इसलिए अशांति बढ़ रही है, बहुत केस बढ़ रहे हैं डिप्रेशन के संसार में। हमारे यहाँ डॉक्टर्स की अभी 4-5 दिन पहले ही नीचे, जैसे आप लोग आए हैं, डॉक्टर आए थे, उन्होंने ज्ञान लिया हुआ था। एक डॉक्टर पंजाब से आए मेरे पास, उनको बीमारियों की समस्या, डॉक्टरों को बीमारियों की समस्या, कई आए होंगे। उसने क्या कहा, मैंने भी पहली बार ऐसा कोई न्यूज सुना जाना, कहा हमारे परिवार में हर व्यक्ति को डिप्रेशन हो गया है, हमारे माँ बाप, हम दोनों, हमारे बच्चे 4। सोचो, एक को होता है परिवार में, वो तो मैं बहुत सुने थे, सबको हो गया, 8 को। डिप्रेशन की कोई दवाई नहीं होती संसार में, वो डॉक्टर खुद जानते हैं, दूसरों को तो खिलाते हैं पर डॉक्टर जानते हैं कि डिप्रेशन की कोई दवाई नहीं है। क्या कारण है? साइकेट्रिक प्रॉब्लम, दिनों दिन सुनामी की तरह उग्र रूप लेती जा रही है, और मुझे ऐसा लगता है सन 2020 तक इसका बुरा हाल हो जाएगा। नींद ना आना रात को, बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा परेशान रहना, बहुत ज्यादा चिंताओं में रहना, ये बढ़ता जा रहा है। लोग आते हैं मेरे पास, स्टूडेंट, सवेरे जो एक बात सोच ली वही बार बार घूम रही है, हम उसे रोक ही नहीं पा रहे, क्या करें, अब पढ़ाई हो नहीं रही है। मैं बहुत होशियार स्टूडेंट, पता नहीं मुझे क्या हो गया अचानक। सभी जान लें, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम, बोलो उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। जब तक हम स्वयं को चेंज करने का मन नहीं बनाएंगे, हमारी परेशानियां, हमारे दुख दर्द, हमारी समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। आप जानते होंगे डिवोर्स के केस भी भारत में पिछले 5 साल में 10 गुने हो गए हैं। हमारे यहाँ जजेज आए थे, अभी बहुत सारे जूरिस्ट का प्रोग्राम चलता है साल में 2-3, 150 जज मजिस्ट्रेट थे उस प्रोग्राम में, बता रहे थे भरे पड़े हैं कोर्ट्स डिवोर्स के केसेस से, घर घर में अशांति हो रही है इससे। डिवोर्स ले लेना तो सहज है, लेकिन उसके बाद का जीवन मनुष्य आधा डेड हो जाता है, क्योंकि भारत की कल्चर इसको स्वीकार नहीं करती, वेस्टर्न कल्चर है। एक एक पर स्त्री पुरुष 4-4 बार शादी कर लेते हैं, उनके लिए खेल है, नहीं बनी छोड़ो, अकाउंट अलग, घर अलग, कार अलग, सबके। मैं जब पहली बार गया तो बच्चे से पूछा, किसकी कार? मम्स कार। तुम्हारी नहीं? नहीं, मम्मी की कार है ये। ये किसका घर? पापाज हाउस। मेरा है, ये भी नहीं कहना आता उनसे, देखो कल्चर। और भारत में अगर साइकिल भी है, हमारी है, सबकी है वो, ये भारत की महान कल्चर की ब्यूटी है। तो हमारे अंदर देवत्व था, द्वापर युग से नीचे उतरे हैं ज्यादा, कलयुग में पूरे उतर गए। अब जब हम पूरे उतर गए, उतरे क्यों? किसी का दोष नहीं है इसमें, आत्मा जो परफेक्ट थी, 100 डिग्री थी, वो अपनी पावर को यूज करती 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 खत्म होती आई ना, कहीं से रिगेन नहीं किया। अब गाड़ी में आपने 50 लीटर तेल भरवा लिया और चलते ही जाते हो, खाली होगा या नहीं? भराना तो पड़ेगा। हमने कहीं भराया नहीं, गुरु आए, सन्यासी आए, अच्छी अच्छी चीजें सिखाई, लेकिन किसी ने ऊपर से कनेक्शन नहीं कराया। किससे? किससे? सर्वशक्तिमान से। इसलिए शक्तियां आई नहीं, तो उतरते ही आए, तो जैसे जैसे आत्मा वीक पड़ी, पाप कर्म होते रहे। मनुष्य ने सोचा अब किधर सुख मिलेगा, विषय विकारों में सुख ढूंढा, फिर धन संपदा में सुख ढूंढा, वस्तुओं में सुख ढूंढा, मनुष्यों में सुख ढूंढा, थोड़ा थोड़ा मिला, फिर खत्म हो गया। मुंबई की 10 बहुत वेल्दी लेडी हमारे पास एक प्रोग्राम में आई, कोई मुझे जानता था उसमें मुझे बुलाया, सब बैठी। मैंने कहा बोलो आपने कैसे याद किया। देखो उनका क्वेश्चन, हमारे पास सब कुछ है। एक ने कहा 50,000 रुपए रोज मिलते हैं खर्च करने के लिए, घर के लिए, सब कुछ है, पर हमें लगता है तुम्हें कुछ चाहिए। अब क्या चाहिए वो तुम बता दो। एक अभाव, एक मिसिंग फीलिंग हर मनुष्य को रहती है। क्यों? क्योंकि आत्मा में जो मूल क्वालिटीज हैं वो जब खो जाती हैं, तो सांसारिक चीजें आत्मा को सुख नहीं देती। अच्छा भोजन खा लिया मन पसंद, थोड़ी देर के लिए मन खुश हुआ, लेकिन आत्मा अगर सुखी नहीं है तो खुशी चलती नहीं है। फिर जरा सा गलत भोजन मिल गया, कम मिल गया, तो परेशान हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, झगड़ा कर देंगे। तो अब हमें कर्मों को श्रेष्ठ बनाना, अब हम पहुंचे हैं समय के चक्र की बात भी आप लोगों को सुनानी है मुझे। पता है कहां पहुंच गए हम? बोलो कहां पहुंच गए? हैं सब बोलो कहां पहुंचे? हम कलयुग के अंत में, पहले हम वो कहेंगे, ये चक्र चलते चलते वहीं पहुंच रहा है जहां से शुरू हुआ था, थोड़ा सा ही गैप है बस। ये सत्य सभी को जानना ही चाहिए। देखो विज्ञान ने बहुत सुख दिए, लेकिन मनुष्य सुखी नहीं हुआ। मैं डॉक्टरों से पूछा करता हूं, एलोपैथी मेडिकल साइंस पे सारे संसार में कितनी रिसर्च हो रही है, कितना पैसा लगाया जा रहा है, पर बीमारियां, विज्ञान भी बढ़ रहा है मेडिकल और बीमारियां बढ़ रही हैं। तो एक नई चीज शुरू की है मेडिकल ने, अभी अभी कर रहे हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन। बीमारियां हो नहीं इसको रोको, हो गई फिर रुकती नहीं है, होने से पहले रोको। अब ये नई थेरेपी चालू होने जा रही है संसार में, लेकिन जब तक मनुष्य के विचार श्रेष्ठ न हो, जब तक उसके कर्म श्रेष्ठ न हो, उन कर्मों को तो भोगना पड़ेगा ना, तो कहां से ये चेन रुकेगी? मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं और आपको उसका इलाज भी बताता हूं। घुटना दर्द किस किस को है? हाथ उठाएंगे प्लीज। अच्छा, हमेशा माताएं ज्यादा, भाई थोड़े कम। माताओं से आधे भाई, बल्कि यहां तो 1/3 है। माताओं को ही घुटना दर्द क्यों होता है ज्यादा? कैल्शियम की कमी, और वॉकिंग नहीं करती, घर में ही घूमती हैं, खड़ी रहती है किचन में, और टेंशन, हील वाले चप्पल पहनते। आप बिजनेस खत्म कराएंगे तो जूतों वालों का। ये सब तो है, लेकिन ये बात मुझे एक अच्छे डॉक्टर ने बताई कि जो व्यक्ति मन पर ज्यादा प्रेशर रखता है उसको घुटने दर्द अवश्य होते हैं। मैंने पतले लोगों को भी देखा, ये नहीं भाई तो वजन बढ़ा हुआ उनको ही है, पतलों को भी हो रहा है प्रेशर। आप ये समझ ले, दिमाग पर प्रेशर टेंशन अलग चीज है, प्रेशर अनेक बीमारियों को जन्म दे रहा है, क्योंकि सब कंट्रोल रूम इधर ही है ना, ये डब्बा बहुत बड़ा है, देखो ये 2-2 किलो का है हर एक के पास, छोटी सी चिप्स में कितना माल भर देते हैं, और ये कितना बड़ा है, इसमें न जाने क्या क्या भर लिया है सबने। कईयों ने तो इसको क्या बना दिया, डस्टबिन बना दिया है, साफ नहीं करेंगे तो सारे शरीर में बदबू फैलेगी। अब साफ करना जरूरी है, करना है या नहीं? आपके डस्टबिन घर में भर जाए किचन में, 4 दिन न उठाओ उसे, रह भी नहीं पाएंगे मकान में। ये सब को क्लीन करना ही चाहिए, और उसका एक प्रोसेस है, उसको ही लोग नहीं जानते। ये भी डॉक्टर कह देंगे भाई ठीक करो, बहुत सोचते हो, क्रोध बहुत करते हो, ना करो, पर कैसे, बहुत ना सोचो, कैसे ना सोचे, वो तो निकल रहा है अंदर से। सभी ने अपने मन में ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, नफरत, तेरा मेरा बहुत भर लिया है, इसने मुझे कष्ट दिया, उसके प्रति दृष्टि टेढ़ी है, जब भी उसे देखेंगे मैं हंसाया करता हूं माताओं को। सवेरे उठे, पति ने थोड़ा तंग किया है जीवन भर, उठते ही पति का मुंह देखा, बस सवेरे से कैसा पति मिला, क्या मेरा भाग थे, तंग कर दिया इसने, सवेरे से ही बैड एनर्जी बढ़ना शुरू कर दिया, अब सुख कहाँ मिलेगा। मैं आऊंगा लास्ट में इस टॉपिक पे थोड़ा सा। तो हम कलयुग के वेरी एंड में हैं, सभी को ये जानना ही चाहिए, और ये खेल अब लंबा नहीं चलेगा। इस विनाश के पीछे एक सुंदर रहस्य भगवान ने बताया हुआ, वो भले ही आपने अभी ज्ञान पूरा नहीं लिया, फिर भी मैं बता देता हूं। जब इस संसार का हर व्यक्ति दिल से भगवान को पुकार कर कहेगा ये संसार रहने लायक नहीं रहा, इसे नष्ट कर दो, तब महाविनाश शुरू हो जाएगा, और ये स्थिति बनती जा रही है। ये बड़ा सूक्ष्म रहस्य है इसके पीछे। एटम बॉम्ब्स तैयार हैं, आप सब जानते हैं, उत्तर कोरिया का प्रेसिडेंट भी तैयार है बहुत कुछ करने के लिए, देखते हैं ना। मैं तो उसका चेहरा देखता हूं, सोचता हूं इसकी बुद्धि कैसी होगी, चेहरे पे आता है ना सब कुछ, कैसा व्यक्ति है ये, कभी भी गुस्से में कुछ भी कर सकता है, जो अपने अंकिल को ही तोप के आगे रखवा के उड़ा सकता है, जो अपने सेनापति को ही मरवा सकता है, कुत्तों के आगे डलवा देता है, वो सोचो वो प्रेसिडेंट मनुष्य है या क्या है। ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता, एटॉमिक पावर, क्या करेंगे वो लोग जिन्होंने सुख देना शायद सीखा ही नहीं होगा, सारे संसार को जो डराने के काम में लगे हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति अपने विनाश की भी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि रावण को भी तो कोई मिल जाता है ना, ये थोड़ा है कि रावण ही सबसे शक्तिशाली है, कोई उसे मार नहीं सकता, हर एक के ऊपर कोई ना कोई होता ही है। तो ये वो समय आ गया है जब परमात्म कार्य संसार में चल रहा है, हमें तो आपको ये कहना है बस, अगर आप भगवान से मिलना चाहते हैं, यदि आप उससे सत्य ज्ञान लेना चाहते हैं, यदि आप उसके प्रेम के पात्र बनना चाहते हैं, यदि आप उससे शक्तियां ले लेना चाहते हैं, यदि आप इस जीवन को प्योरीफाई करना चाहते हैं, तो ये समय है उसका। सोचा है कभी आपने अपने परम पिता से मिलने का? सोचते हैं या दुनिया की इस भौतिकता में उलझ कर ये संकल्प भूल ही गया है? पूछो अपने से अंदर में, भौतिकवाद, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, सब कुछ बाहर बाहर का दिखाई देता है, मनुष्य कुछ अपनी इनर पावर्स को, इनर पीस को, इनर प्योरिटी को भूलता ही जा रहा है। सोचो कहीं अंतर मन के कोने में आपके अंदर प्रभु मिलन की लालसा उठती है, सोचो, कभी ना कभी उठती अवश्य होगी कि यदि उसको देख ले तो कितना अच्छा हो। भले ही फिर सोच लेते हैं ये तो बड़ा मुश्किल काम है, संन्यास लेना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा। आप सभी को ये जानकारी रहे, हर एक के मन में प्रभु मिलन की इच्छा है, इसका अर्थ है कि प्रभु मिलन होता है। आम खाया ही न हो, आम खाने की इच्छा नहीं होगी। वो हमारा परम पिता है, है या नहीं? पिता अपने बच्चों से कभी मिलता ही न हो, इट पॉसिबल? कभी नहीं। जैसे हमारे मन में उसको मिलने की इच्छा होती है, हम तो भूल गए हैं सब कुछ, मनुष्य संसार में इतना लिप्त हो गया, रम गया है कि उसे सब कुछ भूल गया। लेकिन वो तो नहीं भूला ना, वो ऊपर से देखता है मेरी संतान किस तरह दुखों के चक्रव्यूह में उलझ गई हैं, और वो आता है सबको छुड़ाने, सबको मिलने, अपना प्यार देने, अपना संपदा का अधिकार देने। पिता है तो उससे कुछ तो मिलेगा ना, यहाँ तो पिता से जो इनहेरिटेंस होता है उसको लड़के भी ले लेते हैं, उससे भी तो मिलेगा। ये समय है उससे मिलने का, क्योंकि हम उससे मिलने उसके पास नहीं जा सकते, उसको हमारे पास आना होता है। हम तो राह भूल गए ना उसके पास जाने की, या किसी को पता है? आप माइंड न करे तो एक बात और कह दूं, प्लीज, किसी को गड़बड़ हो तो आई एम सॉरी। गुरु आप में से कईयों ने किए होंगे, किस किस ने किए हैं? कोई भी गुरु संसार अच्छा है, कुछ ना कुछ करना तो अच्छा है, मैं अप्रिशिएट करता हूं जिन्होंने किए हैं, लेकिन किसी भी गुरु ने परमात्म मिलन का मार्ग नहीं बताया। मुझे आजकल के गुरुओं पर तो थोड़ी हंसी भी आती है, मैं सुनता हूं, मुझे याद करना, मेरे को भोग लगाना, मेरी आरती उतार लेना, जब जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा मदद करने, और ऊपर वाला तुम ऊपर ही बैठे रहो, मैं ही काफी हूं इधर। उससे हमें जोड़ा ही नहीं, जिससे जुड़ने पर ही संपूर्ण आनंद मिलता है। गुरु कर लिया, कुछ अच्छी बात मिल गई, कोई समस्या हल हो गई, ओके ये अच्छा है यहां तक। लेकिन उससे जुड़ना चाहिए, जोड़ना चाहिए उन्हें जिसकी हम संतान हैं। बाकी मार्ग तो इधर उधर जाके समाप्त हो जाएंगे, उस तक जाने का मार्ग वो खुद स्वयं आकर ही दिखाता है। इसलिए ये वो समय है जो इस चक्र में, चारों युगों के चक्र में एक बार आता है, पुरुषोत्तम संगम युग, उस पर हम चल रहे हैं, वो भी समाप्ति की ओर है। 100 साल का होता है वो युग, उसके 80 पूरे हो गए, 20 ईयर्स आर लेफ्ट बिहाइंड, केवल 20, सब कुछ बदल जाएगा आपके देखते देखते। लेकिन ये बदलने की प्रक्रिया बहुत भयानक होगी, अति भयानक। मकान पुराना हो जाता है, उसे तोड़ा जाता है, कैसा लगता है? एकदम ऐसा लगता है क्या हो गया ये, देखने में को मन नहीं करता, फिर सुंदर बनता है। तो ये वो समय चल रहा है जब युग बदलने वाला है। अब हमें पुनः अपने देवत्व को एक्टिवेट करना है, जगाना है, जो हमारे अंदर ही है। उसके लिए ही ये राजयोग यहां सिखाया जाता है। कर्म पर फिर आ जाएं, देवताओं के कर्मों को क्या नाम देंगे? देवता बहुत दिव्य थे, लेकिन उनके कर्मों को अकर्म कहा जाता है, यानी वो कुछ ऐसा कर्म उनको करने की जरूरत नहीं जिसे कमाई हो, कुछ मिले, कोई फल मिले, वो परफेक्ट हैं। अब पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म, पाप कर्म, बुरे कर्म, निष्काम कर्म, दिव्य कर्म, सुखदायी कर्म, ये कर्म हैं भिन्न भिन्न। स्पिरिचुअल डेफिनेशन यदि हम आपको दें, अलौकिक परिभाषा इसकी करें, हम आत्माएं हैं, ये हमारा शरीर है, दो चीजें हैं ना। आत्मिक फीलिंग में रहकर जो कर्म किए जाएं वो श्रेष्ठ कर्म, बॉडी कॉन्शियसनेस से जो कर्म किए जाएं वो पाप कर्म। दूसरी डेफिनेशन, पांच विकारों के वश होकर जो कर्म किए जाएं वो पाप, पवित्र बनकर जो कर्म किए जाएं वो पुण्य है। देखो क्रोध वश कितने पाप होते हैं दुनिया में, काम वासना वश तो रोज पाप उजागर हो रहे हैं संसार में, अखबारों में आ रहे हैं, टीवी चैनल्स पर आ रहे हैं। लोभ वश मनुष्य क्या क्या करता रहता है, करप्शन के लिए कितनी भी हमारी सरकारें जोड़ लगा दे पर वो रुकता है, पैसा ही पैसा चाहिए और कुछ नहीं। तो विकारों वश किए गए कर्म पाप कर्म है। हम सभी याद रखेंगे अब से हजार साल पहले भी जो कर्म हमने किए थे वो सब हमारे साथ हैं, वो प्रिंट होते रहते हैं आत्मा में भी फिर ब्रेन में भी, सब मनुष्य के साथ चलते हैं। इसी बीच में मैं आपको एक छोटी सी बात सुना दूं, सीक्रेट, सबसे बड़ा सीक्रेट है, इसको संसार में कोई नहीं जानता। ये नहीं कि मैं जानता हूं इसलिए कह रहा हूं, ईश्वरीय ज्ञान से हमने जाना है। मान लो हजार साल पहले आप एक राजा थे, आपके गलत निर्णय से 1000 लोग दुखी हो गए, परेशान हो गए, उनके घर उजड़ गए, मर गए लोग, उनकी बद्दुआएं जो उन्होंने तब आपको दी थी बैड एनर्जी अब तक आपका पीछा कर रही है, वो बैड वाइब्रेशंस आपके मन से जुड़े हुए हैं हजार साल के, उनको काटा नहीं गया, ये कारण है संसार में डिप्रेशन का। जिसको भी डिप्रेशन हो, जिसको भी रात को नींद ना आए, डोंट माइंड प्लीज, समझ लें उसका पाप का खाता बढ़ गया है, एक्टिवेट हो गया है ब्रेन में, बहुत ज्यादा रात को सोने नहीं देता है, उसे बैड एनर्जी फैल रही है। देखो साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं आजकल, मैं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूं कभी कभी, मेरे काम की चीज मेरे हाथ में आ जाती है चाहे वो 5 मिनट की हो, कि अनकॉन्शियस माइंड से बैड एनर्जी ब्रेन को लगातार आ रही है, ये डिप्रेशन का कारण है। डिप्रेशन वालों के हर चीज का जो एनालिसिस किया साइकोलॉजिस्ट ने तो पाया अनकॉन्शियस माइंड से, ये नाम है साइकोलॉजिस्ट के, सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस सुपर कॉन्शियस, उससे बैड एनर्जी ब्रेन में जा रही है, वो डिप्रेस कर रही है। अब उसको रोके कैसे, दवाइयों से कैसे रुकेगी, वो गुड एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी ना। तो मैंने जैसे ये पढ़ा था, छोटा सा एक लेख था अखबार में, तो मुझे ख्याल आया कि अगर हम गुड एनर्जी क्रिएट कर दें तो डिप्रेशन नष्ट हो जाएगा, तो मैंने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। डिप्रेशन का एक पेशेंट आया मेरे पास अब से 20 साल पहले, लेडी थी एक, छोटी आयु, 2 छोटे बच्चे का, 2.5 साल से डिप्रेशन है। मैंने उसे कहा, हमारे सामने एक पेड़ था वहां ज्ञान सरोवर में हम रहते, मैंने कहा इसके नीचे बैठना, मैं एक महान आत्मा हूं, भगवान के बच्चे हैं ना, देयरफॉर वी आर ग्रेट, मैं एक महान आत्मा हूं, ये 108 बार लिखो। तभी लिखने को मैंने कहा, फिर कहा रात को सोने से पहले लिखना, सवेरे उठते ही लिखना, फिर दिन में लिखना, रात को लिखना, 3 बार लिखना, वो 2.5 दिन ही हमारे पास थी, पति भी आया था उसका, आप खुश होंगे ये बात सुन के 2.5 दिन के बाद उन्होंने बताया मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया। फिर मैंने ये एक्सपेरिमेंट चालू कराया, तब मेरे पास लोग नहीं आते थे ज्यादा, तब डिप्रेशन था भी नहीं भारत में, फिर 6 मास के बाद एक आया, मैंने यही कराया, फिर 6 मास के बाद एक आया, मैंने यही कराया, ठीक होने लगे लोग 21-21 दिन में परफेक्ट। तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और अब तो डिप्रेशन वाले बहुत आते हैं, युवकों में बहुत डिप्रेशन। तो गुड एनर्जी अगर हम ब्रेन को देते हैं तो हमारे ब्रेन के ब्लॉकेज खुल जाते हैं, नींद भी अच्छी आती है और डिप्रेशन भी दूर हो जाता है। ये छोटी सी विधि आप अपना सकते हैं अपने जीवन में। तो हमें पुण्य कर्मों का खाता अब बढ़ाना है, पाप कर्मों के खाते को नष्ट करना है। स्वीकार है? इसके बिना काम नहीं चलेगा संसार में। मैं तो देखता हूं लोगों के जीवन में अचानक विघ्न आ गए, फर्स्ट क्लास बिजनेस चल रहा, फर्स्ट क्लास फैक्ट्री चल रही, खेल खत्म। ज्वेलरी की बहुत बड़ी दुकान है, 100 ग्राहक रोज आते थे, कोई नहीं आ रहा है। ये कैसे आते हैं? मैं उन्हें छोटी विधि बताता हूं, ठीक होते हैं। आपके महाराष्ट्र में तो गणेश की स्थापना कितनी होती है, हो गया गणेश चतुर्थी, होगा हो गया, कितना धूमधाम होती है। गणेश का बढ़ रहा है ना, क्यों? विघ्न बढ़ रहे हैं ना, और विघ्न इसलिए बढ़ रहे हैं कि पापों का लोड बढ़ रहा है जीवन पर। अब गणेश जी क्या करेंगे बेचारे, खाएंगे तो नहीं उन पापों को। ठीक है, आपने भावना से थोड़ी स्थापना की, 1-3 दिन थोड़ा सा हल्का हो गया, फिर शुरू। गणेश जी की भी दुर्गति कर देते हैं, पीछे डुबो देते हैं, सागर में डुबोने दे रहे आजकल या नहीं दे रहे हैं? कई नदियों पे तो बैन लगा दिया, तालाबों पे केमिकल्स होते हैं ना। तो समस्याओं के कारण भी पूर्व जन्मों के ये पाप के बंधन है, इसलिए विघ्न पड़ता है। बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, टॉप क्लास है, एग्जाम आए बीमार हो गया, बेचारा डिप्रेशन में आ जाता है। हमें इस पाप के खाते को खत्म करना है, झाड़ू लगा देनी है इस पे। कैसे? एक तो राजयोग से ये पाप कर्म नष्ट होते हैं। ध्यान से सुन लेंगे सभी, सर्वशक्तिवान से जैसे ही हम कनेक्ट होते हैं उसकी शक्तियां हमें आने लगती हैं, और ये शक्तियां ब्रेन में फैलती हैं, पाप कर्मों की जो वेव्स हैं उनको डिलीट करती हैं। इसके अलावा कोई तरीका नहीं बचता। दूसरा है, पुण्य कर्म इतने करें कि पाप ढीला पड़ जाए और पाप न हो। पाप मनुष्य मन से भी करता है, तन से भी, हाथों से भी, व्यवहार से भी। बड़े बड़े पाप की बात तो छोड़ो, देखो किसी को भी कहो अगर डायरेक्ट पूछो कि कोई पाप करते हो, ना बाबा ना, पाप से तो भगवान बचाए। एक आए ऐसे ही कहा, मैंने कहा अच्छा ये बताओ वेज नॉन वेज क्या खाते हो? कहो तो आजकल नॉन वेज का जमाना ही है। मैंने कहा बताओ कितने मुर्गों की गर्दन मरोड़ी है? हंसने लगा कि हम थोड़ा मरोड़ते हैं, वो तो बेचने वाले मरोड़ते हैं, खाते तो तुम हो तब तो मरोड़ते हैं। पाप हुआ या पुण्य? महापाप है, लोग इसको महापाप समझते नहीं। शराब पीना तो आजकल फैशन हो गया है, नॉन वेज खाना, इसके बिना तो आप रॉयल फैमिली वाले नहीं है, लेकिन ये सब पाप हो रहा है जिसको मनुष्य नहीं पहचानता। लेकिन मैं आपका ध्यान पहले एक दूसरे पाप पर दिलाऊं, कटु वचन बोलकर दूसरों की खुशी छीन लेना, किसी की शांति नष्ट कर देना, जीवन जीने का सुख हर लेना, ये पाप है या नहीं? ये बहुत चल रहा है परिवारों में आजकल, इससे आप यहां से मुक्त होकर जाएं। मैं आपसे वचन लेना चाहता हूं, मुख से हम सुखदाई बोल ही बोलेंगे। बोलो स्वीकार है? इतना लेकर जाएं आज की चर्चा से, वेज नॉन वेज पे तो आप खुद चिंतन करना, दूसरों को खाएं या नहीं खाएं, नहीं तो हमारी शांति भी खाती जाएगी, सुख भी जाता रहेगा। मनुष्य को समझता नहीं है। हमने एक बकरा देखा था महाराष्ट्र के एक मंदिर में, कोई ऐसी देवी का मंदिर था जिस पर भोग ही मांसाहार का लगाया जाता था। मैंने कहा ये देवी देवी नहीं है भाई, देवियां मांसाहारी नहीं होती, ये कुछ गलत लोगों ने भक्ति में इसका प्रचलन शुरू किया है। कहा यहाँ के जो कमेटी है, मंदिर बहुत बड़ा मंदिर जितना हमारा पांडव भवन है इतना बड़ा था, कहा यहाँ की कमेटी ने इसको बंद करा दिया था और राजा का लड़का MLA बना, उसने मिन्नत मांगी थी मैं अगर MLA बन जाऊं तो फिर से चालू कराऊंगा, तो फिर चालू कर दिया है। जो हमें दिखा रहे थे वो 10 मेंबर थे कमेटी के, 10 के 10 हमारे साथ घूम रहे थे। बकरा खड़ा किया था लाल निशान लगाकर बलि देने के लिए। सुनो आप, बकरा कांप रहा था। मैंने उन 10 को दिखाया, देखो इसको साफ दिख रहा है, अब ये बकरा कांप रहा है, इसको कैसे पता है कि आज मेरा नंबर है। जानवर बहुत सेंसिटिव होते हैं, उसको उस स्थान पे बांधा गया है, भले ही लाया हो 200 किलोमीटर दूर से, पर वहां बनते ही उसको फीलिंग होने लगी है, वाइब्रेशंस उसने कैच कर लिए। मैंने कहा ये इसको भयभीत कर रहे हैं सभी, इसको काटा जाएगा, इसकी बलि चढ़ेगी, ये पुण्य है या पाप, भक्ति पाप सिखा रही है। मैं सीधा बोला उनको, क्योंकि ये हत्या ये बलि चढ़ाना ये धर्म के विपरीत चीज है, ये तो किसी ने शुरू कर दी थी खाने के लिए कि देवियों को भी खिलाओ खुद भी खाओ प्रसाद मिलेगा ना, इससे देवी प्रसन्न होगी, इम्पोज से बिल, और वो देवी देवी नहीं है जो इन चीजों को स्वीकार करे। ये अब हमने ईश्वरीय ज्ञान से जाना है। जब धर्म का मूल ही अहिंसा, क्या संस्कृत में अहिंसा परमो धर्म, जब धर्म का मूल ही अहिंसा है तो हिंसा में धर्म, धर्म में हिंसा का स्थान कहां। तो सुख देना है सबसे बड़ा पुण्य, जहां आप रहें लोग सुखी हो जाएं। दो तरह के लोग होते हैं, ध्यान से सुन लेना, किसी के आने से लोग सुखी होते हैं और किसी के, अब आप सोच लो आपका क्या हाल है। हम कहीं पहुंचे और लोग आनंदित हो जाएं, और हम कहीं पहुंचे और लोग कहें लो फिर आ गई, सोच लें अब क्या करना है हमें। व्यवहार की बात है ना, भावनाओं की बात है ना, व्यवहार को यहां से आप चेंज करके जाएंगे। एक सुंदर घटना सुना देता हूं अभी की। हमारे यहाँ एक मास पहले ही मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी, 800 1000 सीनियर डॉक्टर्स MD और सर्जन और इसके ऊपर के बुलाए गए थे। 2 लेडी डॉक्टर मुझसे मिलने आई, सीनियर 50 साल की आयु। कहा हमारे पतियों से हमारी बनती नहीं है, कॉमन समस्या रोज आती है हमारे पास। तो एक केस अभी मैरिज हुई है और ये केस आ गए, 5 दिन हुए, 1 दिन हुआ, 45 दिन हुए, झगड़े शुरू हो गए हैं, डिवोर्स हो रहा है, क्या करें। तो मैंने उससे पूछा आप तो हाईली एजुकेटेड हैं, बहुत समझदार हैं, मुझे बताओ कहाँ गड़बड़ हो रही है। कहा हम सच बता देते हैं, हम एक दूसरे के फॉल्ट देखते हैं, और देखते ही नहीं सारा दिन वर्णन करते रहते हैं। फिर तो हमारे घर का माहौल बिल्कुल भारी रहता है, निगेटिव रहता है, हमारे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। वो बोलते हैं पापा मम्मी आप ये क्या कर रहे हो, उनकी खुशी नष्ट हो रही है, ये हमें दिख रहा है। मैंने कहा यू आर वेरी वाइज, वाइज लेडी हो गई ना, जिसको पता है हम क्या गलती कर रहे हैं। क्योंकि बुद्धिमान लोग अपनी गलती को जानते नहीं, रियलाइज नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। मैंने कहा बस आप ही करेंगे क्योंकि आप समझदार हैं, रोज कम से कम 3 बार अपने पति को अप्रिशिएट करना। आखिर 5-7 दिन के बाद वो हैरान होकर आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर ही देगा और घर का माहौल प्यार से भर जाएगा। ये कला है अप्रिशिएट करना। कहानी सुना देता हूं थोड़े में, लड़की की नई नई शादी हुई, बहुत तेज थी सास भी उससे भी तेज थी, लड़की ने सोचा इसके साथ रहना तो बड़ा मुश्किल काम होगा। अंकिल के पास गई, उसका अंकिल तांत्रिक था। अंकिल मुझे जहर चाहिए, क्या करेगी, बुढ़िया को मारना है, बहुत तेज है, इसके साथ जीना मुश्किल होगा। उसने कहा तुम पागल, इसको जहर दे दोगी पकड़ी जाओगी, तुम जेल में पड़ोगी, मैं तुम्हें एक स्लो पॉइजन देता हूँ, थोड़ा थोड़ा रोज भोजन में डालना, 6 मास में मरेगी, किसी को शक भी नहीं होगा, पर एक कंडीशन है, तुम्हें रोज उसकी महिमा करनी होगी, एप्रिसिएशन। कहा ये कौन सी बात है, शुरू कर देती हूँ। खुशी खुशी पुड़िया लेके गई, एक एक चुटकी डालने लगी, जाते ही शुरू कर दी, जो भी आए, अभी घर से गई थी 2-4 दिन रह के, लोग मिलने, अरे मेरी सास हो, ये तो मेरी माँ से भी ज्यादा प्यार देती है, मैं तो स्वर्ग में आ गई हूँ, ऐसी सास तो सबको मिले, मुझे सवेरे चाय बना के दे के फिर उठाती है, लो पियो चाय। अब सास ने देखा ये बहू तो बदल आई, घर गई थी 2-4 दिन तो सुना, कहा तो रियली महिमा करे, उसने भी शुरू कर दिया, मेरी बहू तो देवी है, मुझे कुछ काम नहीं करने देती, मेरे पैर भी दबाती है, हमारे घर में तो लक्ष्मी आ गई, हम तो आनंदित हो गए। अब दोनों एक दूसरे की महिमा करें, 3 मास हो गए। अब लड़की ने सोचा सास तो बहुत अच्छी हो गई, इसको मारना तो पाप हो जाएगा, फिर भागी भागी गई। अंकिल हंसने लगे, उसने कहा कि वो जो स्लो पॉइजन था ना, 3 मास में कुछ तो असर हुआ होगा, अब उसको खत्म करना, ऐसी दवाई दो। वो हंसने लगे, पगली वो तो मैंने तुम्हें राख दी थी, जहर तो तुम्हारे मन में था, उसको निकालना था, जाओ सुखी रहो। सभी अप्रिशिएट करना सीखें एक दूसरे को, अपने घरों में आपको प्यार की गंगा बहानी है, ये काम माताओं का है, करेंगी माताएं, या बहू आई घर में क्या आई, आते ही रोटी जला दी, कल तो तुम हमारा बॉम्बे का घर भी जला दोगी, कैसी बहू आई है, ये नहीं, प्यार दें और सिखाएं। आपको भी तो किसी ने सिखाया होगा ना, कोई भी मनुष्य सब कुछ सीख कर नहीं जन्म लेता, सिखाना, दूसरे को अपना कोऑपरेटिव बनाना, दूसरे की टैलेंट्स को जगाना, ये बहुत बड़ी कला है। मैंने तो यही सीख लिया था, मैं यही रहा 28 साल, किचन था हमारे पास, किचन में पहले भोजन बनाया, फिर साथी मिले, ऐसे लोग भी आते थे जो बुद्धू, अगर मैं उसे कहूं, एक दिन की सच्ची घटना सुना दूं, खिचड़ी बनानी थी, मैं उसे कह के गया 3 किलो दाल डाल देना और 10 किलो चावल और धो के रखना, उन्हें उल्टा कर दिया, 10 किलो दाल 3 किलो चावल, मैं देखा क्या करे, मैं उसको समझ गया इसको बुद्धि कम है, मैंने सोचा कि इसको 2 बार बताया करूंगा और इसे रिपीट कराऊंगा, तो जब मैं अगले दिन बताया, मैं कहा 3 किलो चावल और 10 किलो, 3 किलो दाल और 10 किलो चावल, मैं उसे रिपीट कराया, जब 2 बार ठीक बोला फिर मैं उसको छोड़ा, उसने ठीक किया, सिखाने लगे हम उसको, आज वो एक अच्छा काम संभाल रहा है हमारा। अब बुद्धि इतनी कम थी कि उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता था, नहीं चाहिए हमें, हमारे यहाँ तो समर्पित होने लोग आते हैं ना, हमारे ऊपर है, हम उसे रिजेक्ट करें एक्सेप्ट करें। तो मैं देखा रिजेक्ट करने से आपका संगठन बिल्कुल बिगड़ जाएगा और एक दिन आप संसार में अकेले रह जाएंगे। एक्सेप्ट करें, योग्य बनाएं, बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। तो पुण्य कर्मों का खाता सभी को बहुत बढ़ाना है। अब मैं आपको लाता हूं मन की शक्ति पर, कर्मों से जुड़ा हुआ है। आप अपने जीवन को एंजॉय करें और अनेक समस्याओं को हल करें। मैं छोटी सी विधि 10 मिनट में आपके सामने रख देता हूं। मन को कई भागों में बांटा गया है, वो तो आपने सुना, कईयों ने सुना होगा, सबकॉन्शियस माइंड, सुना है आपने सबकॉन्शियस माइंड, सिंपल भाषा अंतर मन। मन की काम करने की ये 2 स्थिति, मैं 5 की चर्चा नहीं करूंगा, 2। कॉन्शियस माइंड, जिससे हम सोच रहे हैं सारा दिन, सबकॉन्शियस माइंड, ये तब काम करता है जब हमारा ये सोचना शांत हो जाए। रात को सवेरे हम उठते हैं, पहले 10 मिनट हमारे मन को चलने में लग जाते हैं, पहले 10 मिनट हमारा सबकॉन्शियस माइंड अंतर्मन जगा है। अब यही एक ऐसा समय है जब कॉन्शियस माइंड भी काम कर रहा है और सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली जगा हुआ है। इस 10 मिनट का सुंदर प्रयोग करना जीवन में कल से ही। रोज ये 10 मिनट हर मनुष्य के पास आते हैं सुंदर भाग्य लेकर। सबकॉन्शियस माइंड खुला है, पहला संकल्प हमारा बहुत सुंदर होना चाहिए। पहले विचार का इफेक्ट पूरे जीवन पर बहुत गहरा पड़ेगा। मैंने उदाहरण दिया था ना, पति का मुंह देखा और संकल्प किया कैसा पति मिला, बिगाड़ दिया खेल। और उठते ही यदि आप संकल्प कर लें, मान लो वो अच्छा नहीं, आपसे बुरा व्यवहार करता है, ये बहुत अच्छी आत्मा है, भगवान का बच्चा है, मेरा गुड फ्रेंड है, 5-7 दिन करने से ही सब कुछ बदल जाएगा। मैंने ये छोटा सा प्रयोग कराया अनेक उन कपिल्स पर जिनके पति या पत्नी तेज स्वभाव के हैं और परेशान हो रहे हैं एक दूसरे से। सवेरे उठते ये बहुत अच्छी आत्मा है, भगवान का बच्चा है, मेरा गुड फ्रेंड है, मेरा सहयोगी है, He loves me very much, I love him very much, ये संकल्प करो, पहला संकल्प जीवन बदल देगा। इससे पहले करना अपने शिव बाबा को गुड मॉर्निंग, और फिर करना रोज करना, बड़ा मजा आएगा। हे शिव बाबा, आपने मुझे सब कुछ दिया, सच्चे मन से सब कुछ दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। दिया सब कुछ या नहीं, या भगवान से भी नाराजगी है? पड़ोसी को बड़ा कम मकान दे दिया, मुझे 1 रूम फ्लैट 2 रूम फ्लैट, ये नहीं, सब कुछ दिया। सोचो, आंखें दी, शरीर दिया, हाथ दिए, आंखों की वैल्यू उनसे पूछो जिनको आंख नहीं है। हम तो नेचुरल है ना, आंख भी है, कान भी है, मुख भी है, जिनको कुछ नहीं सुनता उनसे पूछो कानों की वैल्यू, जिनको दायां हाथ कट गया है उनसे पूछो एक हाथ की कितनी करोड़ कीमत है। सब कुछ दिया तुमने, बुद्धि दी है, सुंदर जीवन दिया, परिवार दिया, हमेशा यही बोलना, बहुत अच्छा परिवार दिया, बहुत अच्छा जीवन दिया, बहुत श्रेष्ठ बुद्धि दी, आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। बोलो स्वीकार है, मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूं। सिर पे हाथ न रख लेना उठते ही, कैसा भाग्य दिया है, मेरे तो भाग्य फूटे हुए, जीवन भर दुख पाया है, भूल जाओ। मैं बहुत भाग्यवान हूं, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत धनवान हूं। 3 बातें पक्की कर दो, 5-5 बार, सब कुछ बढ़ने लगेगा। माताएं अपने छोटे बच्चों को सिखा सकती हैं, आंख खुले, उन्हें सोने से उठाओ, बच्चा चाहे 2 साल का हो, मैं बुद्धिमान हूं, उनसे बुलवाना, मैं चरित्रवान हूं, मैं स्थिर चित्त हूं, एकाग्र चित्त हूं, स्टेबल माइंड हूं, बढ़ने लगेगा। 3-3 बार बुलवाओ, बहुत एक्सपेरिमेंट कराए मैंने, डल हेडेड बच्चे बुद्धिमान हो गए हैं 3-3 साल। माँ बाप को लगता था इसकी बुद्धि तो काम ही नहीं करती, तो पढ़ेगा ही नहीं, 5 साल का होते होते मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय बन गया। बुद्धि सबके पास है, सुंदर बुद्धि है, कुछ चीजें ब्लॉक्ड हैं, सबको जानना चाहिए, उन्हें खोल देना है। बच्चे बोलेंगे ना तोतली भाषा में उठते ही, मैं बुद्धिमान हूं, सबकॉन्शियस माइंड खुला हुआ है, उस टाइम जगा हुआ है, स्वीकार कर लेगा, बुद्धि का विकास करेगा। मैं बहुत हेल्दी हूं, उठते ही घुटने दर्द है, बहुत दर्द है, पैर नीचे उतारेंगे ना खाट से तो दर्द तो होगा, हाय बहुत दर्द है, पहला ही संकल्प क्या हो गया, बहुत दर्द है, बढ़ जाएगा। अटेंशन दें, बी केयरफुल, सवेरे उठते ही कोई गलत संकल्प ना हो जाए, मैं बहुत दुखी हूं, समझो आपके दुखों में वृद्धि आपने कर दी। पसंद है? घुटनों का इलाज मैं भूल न जाऊं, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। करें आप सभी, अभी देखो आपको अनुभव होगा। मास्टर सर्व शक्तिवान समझते हैं? ऑल माइटी के बच्चे, वी आर वेरी पावरफुल। शेर का बच्चा क्या होगा? हम भी बहुत शक्तिशाली हैं, भगवान के बच्चे। हाथ ऐसे छोड़ो और एनर्जी फील करो, बहुत नजदीक नजदीक नजदीक, फील दिस एनर्जी है। अब ये घुटनों पे रख देना, एक मिनट, घुमा भी सकते हैं, एक मिनट। और ऐसा पांच बार सवेरे कर लो, पांच बार शाम को, दस मिनट कर लो, पांच मिनट कर लो, घुटने दर्द ठीक हो जाएंगे। घुटने दर्द को कहो भागो, मेरे घुटने मेरे गुड फ्रेंड हैं, जीवन भर मुझे दौड़ाया है, हटो। बहुत अच्छे अनुभव होंगे। ये एनर्जी ब्रेन को भी दी जा सकती है। डिप्रेशन के पेशेंट को मैंने बहुत कराया, मैं मास्टर सर्व शक्तिमान हूं, दो तीन बार बोल के यहां हाथ रख लेंगे, आंखें बंद। आपको कभी भी टेंशन हो, सिर गरम हो गया हो, सिर दर्द हो रहा, माइग्रेन ठीक हुए इससे? माइग्रेन की भी कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में, माइग्रेन ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, सवेरे उठकर सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करेंगे। लेकिन अटेंटिवली ध्यान दें, जो लोग देर से उठते हैं क्या होता है, कोई 9 बजे उठे, कोई 10 बजे भी उठते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उठते ही जागृत है और चारों ओर क्या हो गया 9-10 बजे, बैड एनर्जी, द्वार खुल गया उसका, पापी भी सब उठ गए हैं, वो बैड एनर्जी अंदर आने लगेगी। उठते ही आपने अखबार पढ़ लिया, अखबार में पहली हेडलाइन प्राय गड़बड़ वाली होती है ना, अशांति लाने वाली, बुरा समाचार कोई, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, अशांति को आपने निमंत्रण दे दिया। इसे उठते ही अखबार नहीं, कई योग आदत होती है, उठेंगे टेबल पे अखबार पड़ा, पहले वो ही पढ़ेंगे, बहुत बड़ा अशांति का कारण है ये। इसलिए 15 मिनट के बाद पढ़ लेना। भारत में तो एक कल्चर थी ना, घरों में ही लोग मंदिर रखते थे, अभी मैं देखता हूं बहुतों के, जिनके बड़े घर हैं मंदिर बनाते हैं, उठते ही पहले मंदिर में जाके खड़े होंगे ताकि सुंदर विचारों से दिनचर्या की शुरुआत हो। आप अब एक लास्ट प्रयोग आपको सिखा देता हूं और मुझे विश्वास है आपको याद रहेगा। सवेरे उठते ही मेरा आज का दिन ऐसा बीतेगा, कैसा वो संकल्प कर दो, मेरा आज का दिन खुशियों में बीतेगा, यही पहले 10 मिनट में। आज मुझे बहुत सुख मिलेगा, आज मुझे हर कार्य में सफलता मिलेगी, वो काम अटका हुआ था ना आज सफलता पूर्वक पूर्ण हो जाएगा, आज जहां भी मैं जाऊंगा खुशियां बिखेर कर आऊंगी। संकल्प कर दो, 5 बातों में कर दो, मेरा आज ऐसा होगा। आपको दुकान है, आज मेरी दुकान पर इतने ग्राहक आएंगे, आज सफलता मेरे साथ साथ परछाई की तरह चलेगी। पसंद है? सवेरे ही सुंदर विचार। तो रोज अपने दिन की शुरुआत पहले 10 मिनट सुंदर विचारों से करना, और ये भूल कर के मैंने कुछ पाप किए हैं, मैं पुण्य आत्मा हूं, क्या हूं बोलो जरा, मैं भगवान की संतान पुण्य आत्मा हूं, पाप मिटता जाएगा, जागृति आती जाएगी अंदर में। मंदिरों में जाके रोज कहते हैं ना, हे प्रभु मैं बहुत पापी हूं नीच हूं, कहते कहते वही बन गए, मैं पुण्य आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं भगवान की संतान बहुत शक्तिशाली हूं, मैं पुण्य आत्मा हूं। जैसे संकल्प हम बार बार करेंगे वही होगा। पास्ट के इफेक्ट से भी मुक्त होकर जाएं आप यहाँ से, अलग टॉपिक है एक। इधर पास्ट का दबाव है ना कईयों के सिर पे, हटाएं जो बीत गया। हिंदी में कहावत है, बीती को जो बहुत वर्णन करते हैं ना, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। अभी गड़े हुए मुर्दों को उखाड़े तो क्या आएगा, बहुत बदबू आएगी। पुरानी बातों को उखाड़ने से बदबू भर जाएगी जीवन में। अब एक लास्ट थॉट के साथ समाप्त करेंगे। बहुत सुंदर सीक्रेट है ये सृष्टि का, हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। क्या है? हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। रिपीट किया है मैंने, संभालो इसे। जो संकल्प हम बार बार करते हैं उसको हम क्रिएट करते हैं। सोच लेना क्या सोचते हैं हम। इसलिए अब एक सुंदर संकल्प के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ अब से जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा। संभालो इसके सबकॉन्शियस माइंड में, 7 दिन तक सवेरे के 10 मिनटों में ये भर देना अपने अंदर। मेरे साथ आज से सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और आप पाएंगे बुरा होने वाला भी अच्छे में बदल जाएगा, क्योंकि क्रिएटिव पावर हमारे पास है। वी आर मास्टर क्रिएटर। ओम शांति। आप सब बहुत सुखी रहें और फिर यहाँ आइए, यहाँ आपको ज्ञान का प्रकाश मिलता ही जाएगा। जीवन को सुखी बनाना यही ज्ञान का लक्ष्य है। अंतिम यात्रा भी सुखी हो, वर्तमान के जीवन की यात्रा भी आनंद से भरी हुई हो। गायत्री बहन आ गई, आपका मोस्ट वेलकम बहन जी, आइए। ओम शांति। ठीक है, चलो योग के। अच्छा, गोल्डन जुबली आपकी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ, बहुत कम सेवा केंद्रों की गोल्डन जुबली है गोलाबा को, इसके लिए बधाई।
सेवाओं के 64 वेरी गुड पूर्वक। हाँ,
बहुत अच्छा।
तो भाई साहब आएंगे हमारे पास और वहाँ भी सबको बताएंगे।
बधाई आपको इतनी लंबी सेवाओं की, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, अभी लाल लाइट कर दें आप और ट्यून बजाएंगे सभी। अब विजुअलाइज करेंगे अपने को चमकती हुई आत्मा, विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे और मुझसे चारों ओर प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। मैं पीसफुल हूं, बहुत शांत, शांति तो मेरी नेचर है। मैं भगवान की संतान हूं, वे शांति के सागर हैं। अब ऊपर देखें, आकाश के परे ब्रह्मलोक, जहां रहते हैं हमारे परमपिता, जो हमारे हैं। वे शांति के सागर हैं। उनसे फैलते हुए शांति के वाइब्रेशंस नीचे आ रहे हैं, ये शांति की तरंगे मुझ में समा रही हैं। शांति की किरणों का फाउंटेन मेरे ऊपर। ओम शांति।
ओम शांति। भ्राता श्री का बहुत बहुत धन्यवाद आपके मार्गदर्शन हेतु।